आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की नारी शक्ति अपने साहस और मेहनत के दम पर नई ऊंचाइयां छू रही है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को लेकर दशकों से जारी विलंब का अंत होगा।
राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। 2023 में नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है।
महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना करते हुए कहा कि यह कानून महिलाओं के आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला एक ऐतिहासिक कदम है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारी मातृशक्ति के वर्षों के संघर्ष और साधना की लोकतांत्रिक सिद्धि का महापर्व है। यह महिलाओं के आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला युगांतरकारी परिवर्तन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें यह दृष्टि दी है जिससे आज भारत की बेटियां विकास रथ की ध्वजवाहक बन रही हैं और आपके वुमेन लेड डेवलपमेंट के विजन के साथ विश्व पटल पर अपनी नई पहचान स्थापित कर रही है।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के कोषागारों में हुई भारी वित्तीय अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है। मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य गठन यानी वर्ष 2000 से लेकर 2026 तक के सभी ट्रेजरी लेन देन की गहन जांच की जाएगी। गढ़वा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के पैसे की एक एक रुपए की रिकवरी की जाएगी।
अवैध निकासी किसी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच टीम का गठन कर दिया गया है, ये केस हैंडओवर भी किया जा रहा है सीआईडी को। मैंने तो सुझाव दिया है मुख्यमंत्री जी को कि जब से झारखंड बना है तब से इसकी जांच होनी चाहिए, 2000 से लेकर अब तक की ये जांच हो।
सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस अधिकारी डीसी विनय चौबे को हजारीबाग सेवायत भूमि घोटाला मामले में बड़ी राहत दी है। जस्टिस बीवी नागर रत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए साफ किया है कि विनय चौबे देश नहीं छोड़ सकेंगे और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि मामले का ट्रायल और जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में आयोजित माय भारत बजट क्वेस्ट के दूसरे दिन का उद्घाटन विधायक सीपी सिंह ने किया। इस समारोह में झारखंड और पश्चिम बंगाल के लगभग 1000 युवाओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि सीपी सिंह ने युवाओं को विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन से जुड़ने का आह्वान किया।
हम बिहारी हैं, हम झारखंडी हैं, हम बंगाली हैं, क्या है भाई, भारत तो देश एक है, पेड़ एक है, डालियां अलग अलग है, सबका महत्व है।
राज्य निदेशक ललिता कुमारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता से युवा केंद्रीय बजट की बारीकियों को समझ रहे हैं। पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र में आज सुबह सशस्त्र अपराधियों ने प्रज्ञा केंद्र संचालिका से करीब 3 लाख रुपए और लैपटॉप लूट लिया। विरोध करने पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें महिला के पैर में 2 गोलियां लगी। हमले में उनके पति भी घायल हुए हैं। घायल दंपति का इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी रांची को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आज नगर निगम ने भव्य जागरूकता रैली निकाली। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के तहत यह रैली निगम कार्यालय से जयपाल सिंह स्टेडियम तक पहुंची। महापौर और नगर आयुक्त ने नागरिकों से शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने और कूड़ा हमेशा कचरा पात्र में ही डालने की पुरजोर अपील की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।
नमस्कार।